हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। हमारी पिछले सिटिंग में हमने भगवद गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लिया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास ताम स्थितिक्षस्व भारत। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो वो काफी उपयुक्त था हमारे पिछले बार का श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सर्दी गर्मी मान हानि सर्दी गर्मी इनका कार्यक्रम इस भौतिक संसार में चलता रहता है, उसी प्रकार से सुख दुख इस भौतिक संसार में आते हैं जाते हैं। आगम अपाइनो नित्य, वो नित्य रूप से आएंगे नित्य रूप से जाएंगे। तो मानो फिर अर्जुन पूछे तो फिर मुझे क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, ताम स्थितिक्षस्व तितिक्षा, सहन सहन करो अर्जुन। और हमने उस श्लोक को पिछले दो श्लोकों के संदर्भ में समझा, जहां पर भगवान नत्वे वाहम 12वें श्लोक में कहे कि क्या कहे, कि हम सब नित्य हैं, भूत वर्तमान भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य के विषय में कहते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा कि पहले भी हम सब थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, परंतु अंतर केवल इतना ही है कि मैं सब कुछ जानता हूं अर्जुन, तुम कुछ नहीं जानते, न तो भूत के बारे में न भविष्य के बारे में। और उसके पश्चात फिर देहिनोस्मिन यथा देहे, इस श्लोक में भगवान देह कैसे परिवर्तनशील है इसके विषय में बताया कि दोनों विपरीत, आत्मा जो कि शाश्वत है और देह परिवर्तनशील, और इस देह में इस आत्मा को, शाश्वत आत्मा को रहना पड़ता है। तो ये किस प्रकार से है, मानो कि कोई पशु है जिसको पिंजड़े में बंद करके रखा गया है। अब यहां पर मान लीजिए बंदर को पिंजड़े में बंद किया है, किसी पक्षी को या किसी बंदर को बंद किया है, तो उस पशु का स्वरूप क्या है, उसे बाहर निकलना है, परंतु पिंजड़े के वजह से उसकी जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर रुकावट आ रही है, बंधन उसकी स्वतंत्रता के ऊपर देखा जा रहा है। तब मान लो कि वो पिंजड़ा एक ही समान दिखाई देगा, परंतु यदि पिंजड़ा परिवर्तनशील हो तो अब उसमें होता क्या है कि यदि उस पशु पक्षी को अलग अलग पिंजड़े में डाल दिया जाए तो हर समय वो अलग अलग पिंजड़े में रहने की वजह से वो पशु और ज्यादा भ्रमित रहता है। आपने देखा होगा कई बार घरों में लोग किसी पक्षी को बांध कर रखते हैं पिंजड़े में, तोते को, तो वो जो पिंजड़ा है वो पिंजड़े के बारे में सब कुछ जान लेता है कि ये पिंजड़े में मुझे खाना कहाँ मिलता है, छोटी सी कटोरी कहीं अटकी होती है उस कटोरी में उसे खाना मिलता है, तो उसे पता होता है कि इस कटोरी में मुझे रोज खाना मिलता है, इस कटोरी में पानी मिलता है। अब मान लो कि वो कटोरी बदल दी जाए हर दिन हर हफ्ते हर महीना या पिंजड़े के स्वरूप बदल दिया जाए तो वो तोता और ज्यादा दुख में रहेगा। यदि एक ही पिंजड़ा होगा तो धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, धीरे धीरे जितना पहले वो पंख मारता था अब इतना नहीं, धीरे धीरे उसमें ही वो सुकून से रहना एडजस्ट करेगा। तो ये शरीर इसी प्रकार से परिवर्तनशील प्रकृति ने बना दिया है कि आत्मा यदि किसी एक शरीर में, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है शाश्वतता, नित्यता, तो किसी एक शरीर में शाश्वत रूप में यदि आत्मा रहना भी चाहे तो प्रकृति नहीं रहने देती। तो अब फिर भगवान उसके अगले श्लोक में कहे कि एक तो शरीर परिवर्तनशील और उसके पश्चात ये शरीर जो इस पूरी सृष्टि में अंदर जी रहा है, या आत्मा उस शरीर के अंदर और शरीर उस सृष्टि के अंदर, तो पूरी सृष्टि भी शरीर के समान परिवर्तनशील, क्योंकि शरीर किससे बना हुआ है, सृष्टि के तत्वों से, पंच महाभूत से सृष्टि बनी हुई है, हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ। तो पिंजड़े के अंदर पिंजड़ा और दोनों पिंजड़े परिवर्तनशील, शरीर परिवर्तनशील, ये सृष्टि परिवर्तनशील समय के प्रभाव से, तो आत्मा करे तो क्या करे, सहन। एक कैदी क्या करता है, उसको जब कैद खाने में डाल दिया जाता है तो यदि उसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो जी नहीं पाएगा, उसे जीना है तो उसे सहन करना होगा। तो जो पिछला श्लोक हमने लिया वो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें भगवान साफ साफ अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें बदलना होगा, प्रकृति को मत बदलो, प्रकृति को मैं स्वयं भी नहीं बदलने वाला और न तुम बदल पाओगे, इसलिए तुम अपने आप को बदलो और उसके द्वारा तुम पूरी प्रकृति को बदला हुआ पाओगे। तो यदि अंग्रेजी में कहा जाए दी वन लॉ विच इज वेरी कॉन्स्टेंट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज, इट अपियर्स टू बी पैराडॉक्सिकल, देयर इज वन लॉ विच इज अल्टीमेटली वेरी कॉन्स्टेंट is the law of constant change that cannot be changed because it keeps constantly changing. तो अब जो पिछला श्लोक हमने लिया उसमें भगवान ने अर्जुन को कहा सहन, सहन करो, ताम स्थितिक शस्व भारत। तो अब आज के श्लोक में और भगवान अब अर्जुन को क्या बता रहे हैं, यम हिन व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, यम हिन व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, यम हिन व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषर्षभ, वो व्यक्ति पुरुषों में श्रेष्ठ है जो इस भौतिक संसार के सुख दुख को समान रूप से देखता है और एक धीर व्यक्ति के समान उसे सहन करता है, और वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। सो मृतत्वाय कल्पते, वो योग्य है मोक्ष प्राप्ति के। तो अब अचानक भगवान देह परिवर्तनशील और इस पूरी सृष्टि के विषय में कहने के पश्चात फिर मोक्ष के विषय में कहना क्यों प्रारंभ किए, तो आज हम इस श्लोक को लेकर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पिछले श्लोकों से क्या संबंध है, क्योंकि अब तक भगवान पिछले श्लोकों के संबंध में ही इस श्लोक को कह रहे हैं। सुख तथा दुख का प्रभाव, अर्जुन को भगवान ने पुरुषर्षभ क्यों पुकारा और अंततः अमृत पाने के योग्य कैसे बने। अमृत प्राप्त करना है तो भगवान बता रहे हैं अमृत यदि प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम अमृत की परिभाषा क्या है और उसे प्राप्त कैसे किया जाए। तो आज का श्लोक यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, और यदि हम पिछले दो श्लोक लें मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय और देहिनोस्मिन यथा देह, तो आप क्या समझे, क्या कनेक्शन आज के श्लोक और पिछले श्लोकों का, कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है क्या? भगवान वही चीज रिपीट कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी कुछ इसी प्रकार से भगवान ने कहा था, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इत्यादि। हाँ, द्वंद्व, इस भौतिक संसार के द्वंद्व, और कुछ अच्छा आपको याद है पिछले जो दो श्लोक उनका संबंध हमने कैसे देखा था, 2.13 और 2.14 का संबंध। 2.13 के विषय, हाँ क्या, कौन बोल रहा है, देह परिवर्तन, अच्छा सूक्ष्म और स्थूल देह। हमने, आपको याद है विधि और निषेध के बारे में चर्चा की थी, विधि और निषेध, कि भगवान ने 13वें श्लोक में कहा क्या कि एक धीर पुरुष को क्या नहीं करना चाहिए, और 14वें श्लोक में धीर पुरुष को क्या करना चाहिए। तो 13वें श्लोक में धीर पुरुष को क्या नहीं करना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए, और 14वें श्लोक में धीर पुरुष को सहन करना चाहिए। तो मोहित नहीं होना चाहिए और सहन करना चाहिए, अर्थात विधि निषेध, निषेध और विधि, डूज एंड डोंट्स, यम नियम, करना क्या नहीं करना। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं विधि एवं निषेध का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि ठीक है सर्वप्रथम ये तो जान लिया कि ये भौतिक संसार द्वंद्वों से बना है, जो भी ये सब द्वंद्व हमने सुने, और फिर आत्मा को सहन करना है विधि निषेध के द्वारा, तो उसके बाद क्या, क्योंकि सहन करने का कुछ परिणाम भी तो मिलना चाहिए, कुछ फल मिलना चाहिए कि नहीं सहन करने का। हम कितनी चीजें सहन करते हैं हर समय मन में ये ध्यान में रखते हुए कि कुछ ना कुछ फल मिलेगा वो सहन करने का। ये हर बुधवार कार्यक्रम में इतना सहन करता हूं मैं, ये लेक्चर प्रसाद मिलता है कि नहीं। तो जो भी भगवान विधि या निषेध बताए हैं ये सारे विधि निषेध बताए कहां पर हैं, शास्त्रों में बताए हैं, और शास्त्र भगवान की वाणी, तो कुछ कारण होगा, उसका कुछ फल मिलेगा, इसलिए तो भगवान बताए होंगे। तो यहां पर भगवद गीता दिस चेयर बिहाइंड वहां पीछे देखो, भगवद गीता का उद्देश्य क्या है यह बताया गया है अब इस श्लोक में। भगवद गीता का उद्देश्य क्या, अर्थात हम यदि अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो भगवद गीता का उद्देश्य जानना आवश्यक है। आप लोगों को लग रहा होगा ये अचानक बिना नाविक की नाव, विधि और निषेध का संबंध क्या है इसमें। यहां पर सर्वप्रथम मायावाद सिद्धांत के द्वारा समझेंगे कि विधि और निषेध, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यदि रूल्स एंड रेगुलेशंस की चर्चा हम करें तो रूल्स और रेगुलेशंस को कई आध्यात्मवादी क्यों पालन करते हैं और उनका उद्देश्य क्या है उसे पालन करने का। सर्वप्रथम यहां पर जान लें कि भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक में वो सहन करने से, विधि और निषेध का पालन करने से सोमृतत्वाय कल्पते, क्या प्राप्त होगा, मोक्ष। तो भगवान बता दिए, अर्जुन फिर ये नहीं समझने लग जाए कि भाई जो इतना मुझे सहन करना पड़ेगा उसके उसके पीछे कुछ प्रलोभन भी तो दीजिए, तो तुरंत भगवान ने प्रलोभन दे दिया, क्या अर्जुन मोक्ष प्राप्ति होगी। अब ये जो मोक्ष शब्द है ये ज्यादातर मायावादी या निर्विशेषवादी इस्तेमाल करते हैं, मोक्ष कैवल्य, कि मोक्ष के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो वो जो भी विधि और निषेध का पालन करते हैं वो भी करते हैं, वो भी चार नियम का पालन करते हैं और बहुत ही शिष्टता से रहते हैं और कड़े नियम होते हैं उनके भी, कई बार उनके नियम हमसे ज्यादा कड़े होते हैं, परंतु सिद्धांत के अनुसार उनका मानना क्या है कि वो नियम नाव के समान है। आपको यदि नदी के इस तट से उस तट जाना है तो आप नाव का इस्तेमाल करो, और यदि आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए उस नाव के सहारे तो नाव का क्या करोगे, छोड़ दोगे नाव को, ये थोड़ी नाव का उठ सर पे उठा के नाव को लेके चलोगे। तो उनका सिद्धांत यह है कि यम नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो नाव के समान है जिसका केवल इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बस उसका इस्तेमाल करो, इस्तेमाल कर उसे फेंक दो, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर हाथ साफ करो उसके बाद में यूज एंड थ्रो। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टू बी यूज्ड एंड देन टू बी थ्रोन वंस यू अचीव योर गोल। तो अब ये हम पूछना चाहेंगे कि हम लोग जो इतना सिद्धांत सुने हैं तो क्या ये सिद्धांत सही है या गलत है, इज इट राइट और रॉन्ग। नाव के उदाहरण से, नाव का उदाहरण समझे आप, समझे, तो ये सिद्धांत सही है या ये सिद्धांत गलत। जैसे हम लोग कितने विधि निषेध का पालन करते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, रीडिंग बुक्स, चैंटिंग, फॉलोइंग अ डाइट, ABCD डूज, व्हाट आर द डोंट्स, no meat eating, no intoxication, no this, no that, huh? तो विधि निषेध, तो हम इनका पालन करते हैं। क्या ये हम सब सर्वप्रथम किस लिए पालन कर रहे हैं इसको, यदि पूछा जाए क्यों हम डूज एंड डोंट्स का पालन कर रहे हैं? क्योंकि बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फाइनेंशियली अच्छा है, इकोनॉमिकल है, मन को काबू में रखते हैं, और हमारे किसको प्यूरिफाई, हृदय को, हृदय को प्यूरिफाई करता है, और हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, कृष्ण प्रेम, हृदय को हम शुद्ध करने के पश्चात क्या पाते हैं, शुद्ध हृदय में कृष्ण प्रेम, वो उद्देश्य है ना हमारा, शुद्ध कृष्ण प्रेम वो प्राप्त करना। तो अब शुद्ध कृष्ण प्रेम यदि प्राप्त कर लिया है किसी ने, तो क्या उसको नाव की जरूरत है, क्या उसे ये सब पालन करने की आवश्यकता है, ये प्रश्न है। क्या आध्यात्मिक संसार में मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद वो लोग बोलते हैं 10 ऑफेंसेस और वैष्णव की निंदा नहीं करना, सिंफुल एक्टिविटीज नहीं करना, ये सब आध्यात्मिक संसार में शुद्ध भक्त, क्या वहां पर उनको याद दिलाना पड़ता है कि चाय नहीं पीना चाहिए, कांदा लहसुन है वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है? तो प्रश्न ये है कि हम सब पालन कर रहे हैं विधि विधान निषेध इन सब का कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। जिसने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है क्या जरूरत है उसको, क्या जरूरत है? हाँ, सस्टेन करने के लिए उसको पालन करने की आवश्यकता है, मेंटेन करने के लिए। तो क्या फिर कृष्ण प्रेम भी परिवर्तनशील है इस भौतिक संसार की तरह, कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा कि वो भी शरीर की तरह परिवर्तित हो जाएगा? जस्ट विल गो वन बाय वन। हाँ, we will be considered as fallen. People will not believe. Okay. Okay. You had something. Okay. This is another viewpoint. That will become a way of life. Wo हमारा एक सेकंड नेचर बन जाएगा उस सबको पालन करना। हाँ, आप बोलिए। ये उसका स्वभाव बन जाता है। हाँ, वही चीज आप, हाँ, दूसरों के सामने आदर्श प्रस्थापित करना है। ओके, गुड गुड आंसर्स। यू आपके, हाँ, ओके ओके, हियर वी हैव टू फोर्स आवरसेल्व्स, हमें हमारे ऊपर कोई प्रेशर डालना पड़ता है, और वहां पे स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक रूप से, हाँ, तो फुल मार्क्स। ओके, तो ये उदाहरण यदि हम लें, अब पहला उदाहरण क्या था, जल के ऊपर नाव, अब जल के अंदर मछली, तो मछली का संबंध जल के साथ कैसा होता है? क्या जल मछली के जीवन के लिए आवश्यक है? मछली के जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है ना? और यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए कि अब मछली बड़ी हो चुकी है, अपने अपने पैरों पे खड़ी, जो भी पैर उसके होंगे, तो अब क्या कोई ऐसा समय आएगा चाहे कितनी भी बड़ी मछली हो, व्हेल जैसी बड़ी बड़ी मछली, कि वो पानी के बाहर जी पाएंगे? नहीं। अर्थात मछली के लिए वो जल उसका जीवन है, और उसी के साथ साथ उसका प्रेम है उस जल के साथ। आवश्यकता है जल की। एक होता है कि आपके जीवन में किसी वस्तु की आवश्यकता हो, और कई चीजें होती हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं परंतु वो आवश्यक नहीं है हमारे जीवन में। हमें बहुत अच्छी लगती है परंतु उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। टीवी कोई आवश्यकता नहीं है हमारे प्राण प्राणवायु चलते रहने के लिए। टीवी की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु प्रेम लोग सब इतना करते है ना। और कई चीजें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है, मंदिर में आना, परंतु ज्यादा प्रेम नहीं रहता उस चीजों से। परंतु मछली के संदर्भ में जल एक ऐसी वस्तु है जिससे मछली प्रेम भी करती है और वो उसके जीवन के लिए आवश्यक भी है। तो अब यहां पर विधि विधान या विधि एवं निषेध की तुलना किससे की गई है? जल से। जल से की गई कि ये रूल्स और रेगुलेशंस जैसे मछली के लिए कितने आवश्यक हैं जल, उसी प्रकार से एक साधक के लिए इसका पालन करना उतना ही आवश्यक है, और धीरे धीरे फिर वो उसमें प्रेम करने लगता है। तो एक सुंदर और उदाहरण दिया गया है। हम जब साधना भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारे लिए विधि एवं निषेध ऐसे, हम वो चेन नहीं दिखते लेकिन हमारी स्थिति ऐसी रहती है चार नियम पालन करते समय। कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, हाँ यहां नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये नहीं देखो, वो नहीं देखो, ये नहीं सुनो, वो नहीं सुनो, कितने सारे अलग अलग नियम हैं। उसमें भी फिर जहां कहीं पर भी आप जाओ वो चार नियम तोड़ने के कितने अवसर है, और उसमें फिर बार बार इतने प्रवचनों में इतने सारे डिवोटीज वो सुना देते हैं, और फिर आजकल तो डिवोटीज सब जगह है, तो आप अकेले भी कहीं पर कुछ करना चाहो तो अकेले भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डिवोटी आपको कहीं देखा होगा और पहचान लिया, प्रभु जी आप थिएटर में नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया था तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको देखने आया था। तो हमारे जीवन में शुरुआत में नौसिखिया जो स्थिति होती है हमारी नियोफाइट स्टेज में, ये सारे विधि विधान ये इस प्रकार से ये हमको बाधित करते हैं। परंतु हमारे आचार्य कहते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस शुद्ध भक्त भी पालन करते हैं, शुद्ध भक्त भी पालन करते हैं, और शुद्ध भक्त इन नियमों का पालन करते हैं प्रेम के द्वारा, प्रेम के द्वारा इन नियमों का पालन करते हैं। और जैसे यहां पर देखिए इसके हाथ बंधे हुए दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं इसके हाथ बंधे हुए, तो शुद्ध भक्त के भी हाथ बंधे हुए होते हैं ऐसे। अब इनके भी हाथ बंधे हुए हैं और पिछली फोटो में भी उसके भी हाथ बंधे हुए थे, अंतर क्या है? कि शुद्ध भक्त वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किस प्रकार से देखता है, भगवान का आलिंगन। हनुमान जी कैसे देखते हैं? हनुमान जी सीज एज एन एम्ब्रेस ऑफ लॉर्ड राम। अब आप किसी को आलिंगन करो तो आप उसके फ्रीडम को, मूवमेंट्स को रोक रहे हो ना। किसी को आलिंगन करते हैं तो उसके मूवमेंट्स को रोका जा रहा है ना। बट वो क्या मानता है? वो मानता है इट इज अ टोकन ऑफ लव। जैसे कि कैदी को भी जब चेन से बांधा जाता है तो उसके भी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वो बद्ध अवस्था और ये मुक्त अवस्था। तो इसलिए जब हम विधि विधान की चर्चा करते हैं तो एक प्रसिद्ध श्लोक है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वविधि निषेध्यासुर एतयोर एव किंकर। कि जितने सारे विधि विधान हैं वो किंकर हैं किसके? ये दो रूल्स एंड रेगुलेशंस के। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस? टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये अंततः वहां तक पहुंचने के लिए। अब प्रश्न ये है कि साधना भक्ति में क्या हमें इन विधि विधानों को भी सहन करना है? जैसे भगवान कह रहे थे कि सुख दुख को सहन करो शुरुआत में, हां, परंतु जब तक हम प्रेम से इनका पालन नहीं करेंगे तब तक हम इनका पालन बहुत समय तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने देखा होगा कि जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो जो बेसिक रूल्स हैं वो बहुत बड़े लगते हैं हमें। बेसिक रूल बताया जाता है कि चाय कॉफी, कांदा लहसुन चाय कॉफी, तो ऐसे लगता है कि बस अब तो आत्महत्या करनी होगी, मतलब अब तो कुछ खाने के लिए रहे नहीं, अब बाकी क्या बचा? चाय कॉफी बंद, कांदा लहसुन बंद, तो फिर तो हवा खाओ बस। तो वो नियम इतना बड़ा लगता है शुरू में, फिर धीरे धीरे पता लगता है कि प्रसाद इतना अच्छा बनता है मंदिर में और वो घर पे भी इतना अच्छा बन सकता है, तो फिर धीरे धीरे वो उसमें इतनी कठिनाई नहीं होती। फिर अलग अलग उसके लेवल्स हैं, प्रोग्रेशंस हैं कि हम कैसे सहन कर पाते हैं। अब जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं और हमारे प्रोग्रेशंस है रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसमें धीरे धीरे साक्षात्कार लाने के, तो स्थिति ये होनी चाहिए कि मैं ये नियमों का पालन किसके लिए कर, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, सर्वप्रथम मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, परंतु वो थोड़ा निम्न स्तर है, उच्च स्तर है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे कि हनुमान जी की कथा, हनुमान जयंती हम मनाएं तो हनुमान जी की कथा है कि हनुमान जी ने सीता देवी को सिंदूर लगाते हुए देखा, तो हनुमान जी पूछे ये क्या कर रहे हैं? तो अब हनुमान जी को सीता देवी कैसे समझाएं कि सिंदूर क्या होता है और क्यों सिंदूर लगाया जाता है? तो उन्होंने केवल हनुमान जी को यह कह दिया कि प्रभु श्री राम को अच्छा लगता है, बस प्रभु श्री राम को यह अच्छा लगता है। तो यदि सीता देवी इतना सा लगा रही, प्रभु श्री राम को इतनी सी प्रसन्नता दे रही, तो मैं इतनी प्रसन्नता दूंगा ना। तो पूरे शरीर पे लगा के आ गए, राम दरबार में आके खड़े हो, प्रभु श्री राम देख रहे ये क्या है, ये कौन है? तो इसमें अब पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेना, वो भी कौन? हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हो, कभी सुना है ब्रह्मचारी सिंदूर लगा रहे? तो पूरा सिंदूर विंदूर लगाकर तो बाहरी दृष्टिकोण से तो तपस्या है ना, लेकिन वो क्यों कर रहे थे? प्रभु श्री राम को यदि प्रसन्नता मिल रही है, उद्देश्य क्या है? प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना। तो ये विधि और निषेध का पालन एक शुद्ध भक्त, जैसे आप लोग कह रहे थे, उसका स्वभाव बन जाता है। हमें अपने स्वभाव को उसमें डालना पड़ रहा है, परंतु शुद्ध भक्त वो स्वाभाविक रूप से उसका पालन करते। हम भी इसका अनुभव कर रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से अब हम जो ये सब चाय कॉफी हो, होपफुली ये कांदा लहसुन ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से अब छोड़ दिए। तो अब ये बताया गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में आनंद है। ये स्थिति आ जाती है एक साधक की कि उसको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने में आनंद आता है। आपको अचरज लग रहा होगा कि ऐसी भी स्थिति आएगी कि ये चार नियम और इतने सारे कड़े नियम को पालन करने में मुझे आनंद की अनुभूति होगी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, द ट्रबल्स इन भक्ति, द डिफिकल्टीज इन भक्ति, दे आर माई ग्रेटेस्ट एक्सटेसीज। तो जो हमको डिफिकल्टी लगती है शुद्ध भक्तों के लिए वो एक्सटेसी। तो हम एक उदाहरण से पहले भी समझाए हैं, इस उदाहरण से समझ में आएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में आनंद कैसे। क्रिकेट मैच, आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्रिकेट मैच में जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो आनंद आता है कि नहीं उसमें? यदि क्रिकेट मैच में वो लोग अपने अपने रूल बनाना शुरू कर दे कि सभी जो बॉलर है वो बोले कि मैं अकेला ही क्यों बॉलिंग करूं, सब एक साथ करते हैं चलो, और वो बैट्समैन बोले कि बैट से क्यों मारूं, हाथ से उठा के फेंक देता हूं मैं चार, नहीं वो पूरा नियम का पालन करेंगे तब उसमें उनको आनंद आता है। तो ये बताया गया है, इफ वी रियली वॉन्ट टू एंजॉय कृष्ण कॉन्शियसनेस देन वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली, देन वील एंजॉय, अदरवाइज विल बी मिजरेबल। इफ यू वॉन्ट टू बिकम मिजरेबल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ट्राई टू ब्रेक द प्रिंसिपल्स और एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन अलॉन्ग विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, विल बी मिजरेबल। जैसे कि हम इसकी चर्चा कर रहे थे, जीसस क्राइस्ट उनका स्टेटमेंट है, यू ईदर बी हॉट और यू ईदर बी कोल्ड, इफ यू आर लुक वॉर्म आई स्पिट ऑन यू। अर्थात एक जो शुद्ध भक्त है वो पूर्ण आनंद में रहता है, और एक जो पूर्ण इंद्रिय भोग में रहता है वो भी आनंदित दिखता है। हमारी स्थिति क्या है? हम बीच में, हम बीच में हैं, वो धोबी का जो भी गधा या कुत्ता जो भी, बीच में। न तो पूर्ण प्रकार से इंद्रिय भोग हम भोग पा रहे हैं क्योंकि उसके विषय में इतना सुन लिया है कि अब वो भी भोग नहीं सकते ठीक से। वो भी भोग करने जाते हैं तो बार बार सब प्रवचन याद आते हैं कि इतनी गाली दी थी इसके बारे में, तो उसका मजा किरकिरा हो गया और ये आध्यात्मिक संसार का मजा मिल नहीं रहा है अभी इतना। तो हम बीच में त्रिशंकु की तरह बीच में अटके हुए, इसलिए फिर स्ट्रगलिंग साधका और जो भी नियो फाइट, हु इज ऑलवेज फाइटिंग, वो हमारी स्थिति होती है। लेकिन यदि हमारे अंदर प्रामाणिकता है तो वो नियम के अंदर जो आनंद है वो भगवान की कृपा से हमें मिलता है। यदि हम प्रामाणिक हैं, इफ वी आर सिंसियर, देन कृष्णा गिव्स अ प्लेजर टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी डोंट हैव टू एक्सट्रेनियसली एंडेवर फॉर दैट, वी विल बिकम ब्लिसफुल इन फॉलोइंग द रूल्स एंड regulations। तो इसलिए यह बहुत जानना आवश्यक है कि हमें, फिर से देख लीजिए, यहां से यहां पहुंचना है कि दोनों फोटो में समानता भी है और असमानता भी है। तो विधि एवं निषेध का उद्देश्य यह होना चाहिए अंततः। अब आगे भगवान कहते हैं सुख तथा दुख। तो अब देखिए भगवान कहते हैं कि सुख और दुख, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख, और इसी भगवद गीता में भगवान कहते हैं संसार दुखालय। तो अब कैसे समझो, भगवान ही कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को क्या? हाउ कम द सेम कृष्णा इज सेइंग इन द सेम गीता दैट इज वर्ल्ड इज दुखालय and in this verse he is saying there is sukha also because he is mentioning sukha and dukha. To prashna sarvapratham ye hai ki is bhautik sansar mein sukh hai ya nahi, bhautik sansar mein sukh hai ya nahi hai, sukh hai, kshanik sukh hai, acha to sukh hai लेकिन क्षणिक है। तो फिर भगवान दुखालय क्यों कहते हैं संसार को? तो ये बोल सकते थे कि दुखालय क्षणिक सुखालय। एक श्लोक में भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा, भोगा का अर्थ है भोग सुख। भगवान कहते हैं भोग है, उस भोग में दुख छिपा हुआ है। तो भोग में यदि दुख छिपा हुआ है तो वो किसके समान है? जैसे अभी हमारा प्रेरणा हुआ, प्रेरणा के पश्चात एक विद्यार्थी इसी प्रकार का प्रश्न पूछ रहा था कि दुख के बारे में आप बोल रहे हो परंतु हाँ हम जानते हैं कि दुख आ सकता है, कभी भी आ सकता है दुख, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे कोई बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो अभी सुख मिल रहा है, अभी जो मेरे हाथ में सुख है उसको मैं क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? तो फिर मैंने वही श्लोक कहा यही संस्पर्श जा भोगा और एक उदाहरण दिया कि मान लो गर्मी का मौसम है, प्यास लगी आपको दोपहर के 1-2 बजे और आपको ठंडा लिमका दिया पीने के लिए। अब सोचिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन आपने वो पीने से पहले पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है लाइम एंड लेमनी कार्बोनेटेड वाटर जो भी, 1% पोटेशियम साइनाइड, 1% पोटेशियम साइनाइड, 99% लिमका, 1% पोटेशियम साइनाइड। मैंने कहा पियेंगे आप? क्योंकि जब पियोगे तब तो गले के लिए बहुत अच्छा, एकदम ठंडक महसूस होगी, लेकिन आपको पता है कुछ समय पश्चात उस लिमका का जो ठंडक है उसके साथ वो जहर की गर्मी भी है। जयदत्त महाराज जी को यही उदाहरण देते हैं, आई गिव यू 1 glass ऑफ मिल्क एंड आई आस्क यू व्हाट इज दिस, यू विल से मिल्क, देन आई पुट 1 drop ऑफ पॉइजन एंड आई आस्क यू नाउ व्हाट इज इट, इज नो मोर मिल्क। सो somebody ड्रिंक्स दैट मिल्क, वो एग्जाम्पल देते हैं कि somebody ड्रिंक्स दैट मिल्क एंड डाइज एंड देन देर इज पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्या होगा? डाइड ऑफ मिल्क पॉइजन, ही डाइड ऑफ पॉइजन। तो अब यहां पर सुख और दुख इस भौतिक संसार में हमें इसका प्रभाव क्या होता है, जब तथाकथित सुख बोलते हैं उसे, सो कॉल्ड हैप्पीनेस, लिम्का का उदाहरण। तो कोई व्यक्ति यदि सुखी दिख रहा है तो उसका प्रभाव जीवन पे होता क्या है कि वो उस समय भ्रमित अवस्था में रहता है, भ्रमित अवस्था में कि हाँ वो लिम्का की ठंडक बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर वो सुख थोड़ा सा प्राप्त होने के पश्चात प्रभाव उसके ऊपर ये होता है कि उसकी आशा रहती है कि और आएगा और आएगा और मिलेगा। तो दोनों साथ साथ, इल्यूजन एंड फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, आशा। और यदि दुख में है तो दुख में उसका प्रभाव क्या होता है कि उस दुख को दूर करने के लिए कठोर परिश्रम और निराशा। तो अब देखिए, वो पिछली बार हमने जो उदाहरण लिया था चूहे का, करंट और पूड़ी, याद है? तो इस भौतिक संसार का सुख दुख, उसका कॉम्बिनेशन प्रकृति ने इतना परफेक्ट बनाकर रखा है, इतना परफेक्ट बनाकर रखा है, जैसे कि वो पिंजड़े का उदाहरण, वो चूहा कभी चेष्टा भी नहीं कर सकता पिंजड़े से बाहर आने की, जब तक कि कोई उसको पकड़कर दिखा ना दे कि दरवाजा खुला है, ये सब चक्कर छोड़ो तुम यहां वहां भागने का, सुख दुख के पीछे आत्यंतिक सुख प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, वो जो उद्देश्य है वो सिद्ध करो यहां से बाहर आकर। तो यहां पर भगवान सुख दुख का प्रभाव इस प्रकार से बताए हैं। अब अर्जुन को भगवान पुरुषर्षभ उल्लेख कर रहे हैं। पुरुषर्षभ का अर्थ है पुरुषों में श्रेष्ठ। तो भगवान अचानक अर्जुन को न तो कौंतेय, न धनंजय, न ये सब कुछ पुकार रहे हैं, पुरुषर्षभ पुकार रहे हैं। तो यहां पर भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि जब मैंने गोवर्धन धारण किया था अर्जुन, तो गोवर्धन धारण मैंने किया तुम्हारे पिताजी की वजह से। कौन पिताजी? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव के, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, इंद्रदेव की वजह से मैंने गोवर्धन धारण किया, और उसके पश्चात तुम्हारे पिताजी आए थे मेरे पास, और तुम्हारे पिताजी मुझे आश्वासन दिए कि मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा, और इसका भरपाया करने के लिए, उस गलती का भरपाया करने के लिए मैं अपना पुत्र भेजूंगा जो पुरुषों में श्रेष्ठ होगा। कौन? अर्जुन। तो भगवान याद दिला रहे हैं कि तुमको मैंने यहां पर तुम्हारे पिताजी के रिकमेंडेशन पर रखा है। सो डोंट लेट योर फादर डाउन, कि उन्होंने ये पदवी दी थी। कौन सी पदवी? तुम्हें पुरुषर्षभ की पदवी दी थी, पुरुषों में श्रेष्ठ। हालांकि अर्जुन वो तो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और थे भी। एक कारण अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ इसलिए, पुरुषर्षभ इसलिए, क्योंकि सभी पुरुषों के जो सर्वश्रेष्ठ स्वामी, उनके वो सखा, उनके सानिध्य में, उनके रथ पर आरूढ़। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पिता हैं उनके पिता मैं हूं, तुम्हारे बाप का बाप मैं हूं। तो इसलिए तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी जो भी, वो हम सब क्या आशा रख रहे हैं कि तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो। और पुरुषों में श्रेष्ठ होने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर पौरुष होना चाहिए। पुरुष को पुरुष क्यों कहा जाता है? उसके अंदर पौरुष होता है, प्रोवेस, मैनलीनेस। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि ये पौरुष तुम्हारा ऐसा हो चुका है कि तुम गांडीव नहीं उठा पा रहे। अरे पुरुषों में श्रेष्ठ एक गांडीव नहीं उठा पा रहा तो युद्ध क्या जीतेगा? तो भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा पौरुष्य कम हो रहा है, बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण से। तो इसके द्वारा भगवान सिखा रहे हैं हम सबको कि हमारा पौरुष्य क्या होना चाहिए। कोई व्यक्ति बाहर से बहुत शक्तिशाली दिखे, वो कोई मिस्टर यूनिवर्स या बहुत बड़ा पुरुषों में श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट करें, पुरुषों में श्रेष्ठ मिस्टर यूनिवर्स। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवत गीता के डेफिनेशन के अनुसार मिस्टर यूनिवर्स कौन है, जो ताम स्थिति शस्व, सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, ये सब में सम रहे, वो है पुरुषों में श्रेष्ठ। तो ये वास्तविक पौरुष्य भगवान अर्जुन को याद दिलाते हुए अर्जुन को कह रहे हैं पुरुषर्षभ। अब अंततः अमृतत्वाय कल्पते, कल्पते का अर्थ है टू बिकम एलिजिबल, योग्य बनना। किसके योग्य बनना? मोक्ष के। यहां पर भगवान देखिए बहुत ही एक सुसंस्कृत भाषा में कह रहे हैं कि मोक्ष को क्या कहते हैं, अमृतत्वाय। जिसने अमृत ले लिया है वो अब जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंस सकता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम केवल ये हार जीत के विषय में सोच रहे हो, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये युद्ध। अरे यहां पर मैं तुमको लाया हूं, तुमको अमृतत्वाय कल्पते, तुमको मोक्ष के योग्य बनाने के लिए, मोक्ष का अधिकारी बनाने के लिए तुमको मैं यहां पर लाया हूं। तो इसलिए यहां पर ये हमने समझा कि इतने जो दो तीन श्लोक भगवान सुनाए, अब इस श्लोक में भगवान उद्देश्य बता रहे हैं कि वो जो भी कुछ विधि के अनुसार सहन तुम करोगे और निषेध के अनुसार जो सहन करोगे, क्या तुम्हें मोहित नहीं होना और कैसे तुम्हें सहन करना है, जो कुछ करना है उसका उद्देश्य है कि तुम मेरे धाम को प्राप्त करो। भगवान का निज धाम जो कि अमृत धाम है, वहां पर कोई मृत्यु नहीं है। तो यहां पर भगवान यह बता रहे हैं कि उस अमृत धाम को तुम्हें यदि प्राप्त करना है तो यहां पर मारना होगा। इनकी मृत्यु के पश्चात तुम्हें अमृत वो पदवी प्राप्त होगी। तो यहां पर भगवद गीता का उद्देश्य मारना नहीं है। कई लोग ये मानते हैं कि भगवद गीता क्यों सुनाई गई, बस मारो, भगवत गीता सुनने के बाद फिर मारो। नहीं, भगवत गीता का उद्देश्य है कि हम अमृत धाम को प्राप्त हों, और किसे मारकर, हमारे अंदर के जो अनर्थ हैं उनको मारकर हम अमृत धाम को प्राप्त हों, मोक्ष के अधिकारी हम बने। और फिर भगवान कहते हैं कि ये मोक्ष का अधिकारी कौन है, जो कि शुरुआत इससे है, सम दुख सुखम धीरम, कि जो सुख और दुख में सम हो, और वो एक धीर पुरुष ही सुख और दुख में सम हो सकता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया गया है कि ध्रुव महाराज, उन्हें अमृत धाम प्राप्त हुआ, स्वदेह इसी देह में वो भगवान के धाम गए, और बहुत ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि ध्रुव महाराज जो कि इतने ज्यादा क्रोधित अवस्था में, बदले की भावना में वो तपस्या करने गए, और 6 महीने की तपस्या के पश्चात फिर इतने वो शुद्ध सत्व में हो गए, और ऐसा उन्होंने पद प्राप्त कर लिया, इतनी उन्नति कर ली भगवत साक्षात्कार में, कि उनके लिए जब वैकुंठ विमान आया तो वैकुंठ विमान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं थी। सोचिए, वैकुंठ विमान है, वैकुंठ विमान पर चढ़ने के लिए ध्रुव महाराज के लिए सीढ़ी नहीं, ध्रुव महाराज अब ऊपर चढ़े कैसे, तो सीढ़ी बनकर मूर्तिमान मृत्यु, मूर्तिमान मृत्यु सीढ़ी बनकर ध्रुव महाराज के सामने प्रस्तुत हो गए। तो देखिए ध्रुव महाराज की सफलता कि मूर्तिमान मृत्यु के ऊपर पैर रखकर वैकुंठ विमान पर चढ़कर वो वैकुंठ गए। इसे कहते अमृतत्वाय कल्पते सम दुख सुखम धीरम, ये इसे कहते हैं सफलता। जैसे तुकाराम महाराज, वो भी उनके लिए स्वयं गरुड़ जी आए और गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर तुकाराम महाराज सबको कहने लगे आमी जातो आमचा आमचा क्या आमचा राम राम ग्यावा बोल के गए। कि शुद्ध भक्त ऐसे हैं कि वो नाव का उदाहरण है कि वो नाव में जाते हैं, नाव छोड़ के जाते हैं बाकियों को, वो नाव में बैठकर वापस आने के लिए। तो यहां पर भगवान मोक्ष का अधिकारी कौन बन सकता है, सुख दुख की परिभाषा क्या है और यम नियम का पालन क्यों करना चाहिए, ये सब कुछ बताए। अंततः भगवान बार बार क्या बता रहे हैं, पिछले भी श्लोकों में बताए धीरस तत्र न मुह्यति, इस श्लोक में भी कह रहे धीर। धीर का अर्थ है वो जिसके अंदर धैर्य हो। धैर्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पेशेंस। तो इसके संदर्भ में भगवान बुद्ध के जीवन की एक और कथा प्रसंग है। एक बार एक गांव में भगवान बुद्ध वो अपने शिष्यों के साथ पहुंचे मध्य प्रदेश के एक गांव में, और उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर कुछ पानी लेकर आओ। तो एक ऐसे तालाब सा था, तो इस शिष्य गए वहां से पानी लाने के लिए। तो एक पात्र इनके पास था, तो जैसे ही अब वो पानी लाने गए वहां पर, तो एक बैलगाड़ी वो उस तालाब में वो बैलों को साफ करने के लिए, वो जो भी उसका मालिक था बैलों को साफ करने के, बैलगाड़ी को तालाब में ले आए। तो पूरी पूरे जल में हलचल मची। तो जैसे जल में हलचल मची तो जो भी नीचे सतह पर जो कुछ धूल थी वो ऊपर आ गई। अब इन्होंने पात्र में देखा तो पूरा जो जल था वो दूषित दिख रहा था। तो आए भगवान बुद्ध के पास और कहे कि थोड़ा रुकना होगा। क्यों रुकना होगा? क्योंकि वो बैलगाड़ी अंदर आ गई और वो उथल पुथल हो गया पूरे जल में। तो रुके आधे घंटे पश्चात, फिर कहे कि जाओ अब लेकर आओ। तो वो शिष्य गए फिर से लाने के लिए, और जैसे ही लाने के लिए गए फिर से एक और बैलगाड़ी, और वो रोक रहे अंदर चली गई वापस से पूरे। वो शांत, जब जल शांत हो तभी तो पूरी धूल नीचे शांत होगी। वापस से बैलगाड़ी गई और सब कुछ उथल पुथल, फिर से वो जल दूषित दिख रहा। अब कैसे भगवान बुद्ध को पिलाए जल? तीन बार हुआ ऐसे, आधे आधे घंटा प्रतीक्षा करने के पश्चात तीन बार हुआ। और फिर इतना सब कुछ कुछ एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे के बाद, फिर जब पूरा जल शांत हुआ तब जाकर वो उस तालाब से कुछ जल उस पात्र में लाए, और फिर भगवान बुद्ध ने सब शिष्यों को दिखाया, अब ये जल को देखो क्या दिख रहा है? जल साफ साफ दिख रहा है जल। तो वो ये शिक्षा दे रहे थे कि हमारा मन भी उस तालाब के समान है। ये हमारा मन इस तालाब के समान है, और ये जो बैलगाड़ी है ये इस भौतिक संसार के दुख और सुख, ये आते रहते हैं। परंतु यदि हमें शुद्ध जल इसका पीना है तो हमें करना क्या है? वो बैलगाड़ी को हम नहीं भगा सकते, न तो बैलगाड़ी को भगा सकते हैं न वो बैलगाड़ी को रोक सकते हैं अंदर आने से। हमें केवल रुकना है। भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी कि हमें करना क्या है, वी जस्ट हैव टू वेट अंटिल द डस्ट सेटल्स डाउन। तो उन्होंने कहा जस्ट लाइक द डस्ट वॉज अनसेटल्ड, आफ्टर सम टाइम द डस्ट विल ऑल्सो सेटल डाउन, जस्ट वेट। और वो ये बोल रहे थे टू गेट पीस ऑफ माइंड इज एफर्टलेस, यू जस्ट डोंट हैव टू डू सम एनीथिंग। तो ये बताया कि इस जल, शुद्ध जल लेने के लिए आपको क्या करना था, बस वेट करना था। उसे कहते हैं धीर, पेशेंस, धैर्य। यू जस्ट वेट, पीस ऑफ माइंड इज द मोस्ट एफर्टलेस गोल टू बी अचीव्ड। सोचिए कितना एफर्टलेसली भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा दी कि द पीस ऑफ माइंड इज द मोस्ट एफर्टलेस गोल टू अचीव, यू हैव टू जस्ट वेट। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिस प्रकार से बिन बुलाए दुख आते हैं, है ना, उस प्रकार से बिन बुलाए सुख भी आएंगे, और जैसे बिना बताए दुख चले जाते हैं, सुख भी बिना बताए चले जाएंगे। दोनों चीजें, बिना बुलाए आते हैं और बिना बताए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको इन्फॉर्म, हम अब बस जा रहे हैं, हम युवा अवस्था हमको बोल के नहीं जा, अब हम युवा अवस्था में जा रहे हूं, बुढ़ापा मैं आ रहा हूं, दोनों कब आते हैं जाते हैं। हमें केवल धैर्य रखना है, और यही आज के श्लोक का तात्पर्य है, आज के श्लोक का मर्म है। कि आज का श्लोक पिछले श्लोकों के तुलना में भगवान ने यह बताया कि वो जो सहनशीलता आप अपने जीवन में अपनाओगे अर्जुन, उस सहनशीलता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति, और वो एक धीर पुरुष ही कर पाएगा। और तुम जो ये अधीर बन रहे हो इतना, तो तुम न तो इस संसार में कुछ जीत पाओगे, न दूसरे संसार में, न तो इस लोक में न परलोक में। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हाँ बोलिए।
इस पूरी दुनिया में जो कोई पैदा हो गए हुए है, इंसान मर्द हो या औरत हो, हर किसी को कुछ न कुछ सुख या दुख भुगतना ही पड़ता है। जैसे उसके, जैसे भगवद गीता में कहा हुआ है कि जब कभी पाप बढ़ते जाते हैं तब तब मैं आते जाऊंगा, यहां अधर्म जब मचेगा तब मैं आते रहूंगा, यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं चिदाम्यहम्, ये वचन दे के गए है वो। अब वैसी स्थिति आ गई हुई है, ये प्रश्न मैंने नासिक में एक आपके भाई को पूछा था, वो जवाब नहीं दे पाए। अभी भी वही परिस्थिति दिखाई दे रही है, फिर भी कोई भी उसका जवाब, सही जवाब देने में काबिल हुआ नहीं है। कहने का मतलब इतना ही है कि जहां वहां देखो तो नीति और अनिति का कोई तात्म्य, जिसको बोलते हैं, जिसको संबंध कोई बोलते हैं, कोई देख नहीं रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोगों को सही राह बता रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में वो नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। ऐसी स्थिति में मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं जब बंगलोर गया हुआ था तब एक शिकागो की एक अमेरिकन लेडी वहाँ खड़ी थी शिवालय के वहाँ, और वो शिवा की मूर्ति की तरफ देखते देखते रो रही थी। यकायक मुझे क्या स्फूर्ति हो गई मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके पास चला गया। आरती का समय था, शाम के 7:30 बजे की बात है, वो रो रही थी। मैंने बोला ये सही रोए, नजीक जाकर जब मैंने अपने ऐनक से देखा या मैंने चश्मे से देखा तो ये कोई ना कोई कारण से बहुत दुखी हो गई हो, यहाँ हुआ उसको कोई जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वो यहाँ आई हुई है हिंदुस्तान में। तो उनको मैंने ये बताया, जैसे आपने जो राम का जो बताया ना, राम और हनुमान का, उसी तरह हर लोगों के मन का होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता, इसकी इसके लिए क्या करना चाहिए, ये मेरा सवाल है।
क्या पूछा आपने?
ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो द्वंद जो इनके इनके बोलने में आया था वो द्वंद्व नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन
संसार में
द्वंद बंद के होने के लिए,
बंद करने के लिए
क्या मार्गदर्शन?
वही भगवान ये बता रहे हैं ना कि सबसे पहले
जो बताया बिल्कुल सही है, नहीं करके नहीं है, फिर भी द्वंद्व चलते रहते होंगे तो उसके लिए और कोई चारा होगा, वो आप कृपया बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।
नहीं, ये मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा, भगवान स्वयं उत्तर दे रहे हैं कि ये जो द्वंद्व है इस भौतिक संसार के, इसके ऊपर सर्वप्रथम उपाय है कि इसको सहन करना, क्योंकि इस भौतिक संसार को हम बदल नहीं सकते, हमें अपने आप को बदलना है और हमें इन द्वंद्वों से ऊपर उठना है। द्वंद्वों को हम नहीं रोक पाएंगे, हमें द्वंद्वों के ऊपर उठना है। उदाहरण दिया है कि जैसे बारिश के मौसम में बारिश आ रही, तो बारिश को आप नहीं रोक पाओगे, ये नहीं कि आप किसी न किसी प्रकार से बस अब बारिश नहीं होनी चाहिए बादलों से, चिल्ला दो बादलों को बोल के, नहीं। दो चीजें आप कर सकते हैं, एक तो छतरी लो और या तो बादलों के ऊपर जाओ। तो बादलों के ऊपर जाने का अर्थ है भगवत धाम जाना, कि हम इस भौतिक संसार के द्वंद्वों से परे भगवान के धाम पहुंचे, और जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक छतरी लो। तो वो छतरी क्या है? वो छतरी है भक्तों का संग, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और चार नियमों का पालन। तो वो छतरी है, जब तक हम जी रहे हैं वो बारिश नहीं रुकेगी, तो जब तक जी रहे हो वो छतरी लेके रहो। कई बार यहां वहां से पानी आते रहेगा छतरी में से भी, ये देखते रहो छतरी में होल ना हो जाए, तो हमारा भक्तों का संग कम ना हो, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कम ना हो, और जो नियम है पालन करने के लिए दिए गए हो ठीक से हम पालन करें। और फिर भगवान आश्वासन देते हैं कि यदि हम ठीक से वो छतरी पकड़कर रखेंगे तो भगवान स्वयं इतना बड़ा वैकुंठ विमान भेजेंगे छतरी के साथ, हमें इन बादलों से ऊपर ले जाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की।
हरे कृष्ण आज का जो प्रसादम है वो दो भक्तों ने स्पॉन्सर किया है। सबसे पहले हिज ग्रेस स्थित प्रज्ञ प्रभु जो दुबई से है, अगर वो यहाँ पे है तो कृपया करके वो यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर उनके परिवार से अगर कोई सदस्य है यहाँ पे मौजूद तो कृपया करके मैं उनको नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया करके यहाँ पे आए। और जो दूसरे भक्त है वो श्रीमान हरे कृष्ण, उनके परिवार से एक सदस्य आए हैं, तो हम उनके पूरे परिवार के लिए श्री श्री नीताय गौरचंद्र और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तीन बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
आज के श्लोक के अनुसार जो स्पॉन्सर है उनका भी नाम सही है, स्थित प्रज्ञ प्रभु।
और जो दूसरे भक्त है वो श्रीमान राहुल भगत प्रभु, जो नासिक के भक्तों का इनिशिएशन हुआ है जो पिछले दो तीन दिन में, तो उसके उपलक्ष्य में उसके खुशी में श्रीमान राहुल भगत प्रभु ने आज का फीस स्पॉन्सर किया है, तो हम उनके पूरे परिवार के लिए श्री श्री गौर निताय और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। तीन बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और यहाँ पे अगर आज के इस गीतामृत कार्यक्रम में जो भक्त पहली बार उपस्थित हुए हैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं, कृपया करके 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो हम इन सभी भक्तों के लिए, इनके आध्यात्मिक जीवन के लिए श्री श्री गौर निताय और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृपया करके आप बैठ सकते हैं। और जो प्रभु जी हैं तो कीर्तन के बाद श्रीमान गोविंद आनंद प्रभु यहाँ पे होंगे, प्रभुपाद जी के व्यासासन के, प्रभुपाद जी का जो ऑल्टर है उसके बाजू में वो बैठे रहेंगे। तो जो प्रभु जी हैं वो गोविंद आनंद प्रभु से मिले, और जो माता जी हैं वो सिद्ध रुक्मिणी माता जी हैं, तो कृपया करके उनसे आके मिले ताकि वो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में जानकारी दे सकें।